पदातिपम वंदेहम श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीवसाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हमने एक सेक्शन कंप्लीट किया था नारद नारद मुनि को दक्ष के द्वारा साप, वो कल हमने कंप्लीट कर लिया था। आज छठवें स्कंद का सबसे बड़ा सेक्शन चालू होने वाला है। ये सेक्शन वृतासुर की घटना के बारे में है और उससे कनेक्टेड वृतासुर के पिछले जन्म की घटनाएं भी आएंगी, राजा चित्रकेतु की लाइफ। तो किस प्रकार से वृतासुर राजा चित्रकेतु के पुत्र का जन्म होता है, फिर पुत्र की मृत्यु होती है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद उनको पार्वती देवी के कारण साप मिलता है और फिर वो वृतासुर दैत्य के रूप में जन्म लेते हैं। तो श्रीमद् भागवतम छठवें स्कंद की सबसे बड़ा सेक्शन कहलाता है ये। इनफैक्ट एक मत्स्य पुराण में इस प्रकार से बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें चित्रकेतु वृतासुर से संबंधित लीलाएं आती हैं। तो ये लीला इतनी महत्वपूर्ण है, वृतासुर की जो लीलाएं हैं ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके नाम से भागवत पुराण का नाम जाना जाता है। कि भागवत पुराण एक ऐसे पुराण को कहते हैं जिसमें वृतासुर की लीलाएं डिस्कस की जाती हैं। तो वृतासुर की लीलाओं के पीछे का बैकग्राउंड है कि एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति इंद्र की सभा में आते हैं, इंद्र लोक में आते हैं, और इंद्र इस समय उस विशेष अवस्था में, ऐसा बताया जाता है भागवत में, कि इंद्र उस समय अपने अपने पद के प्रति उनकी बहुत प्रतिष्ठा के कारण थोड़ा उनको घमंड हो गया था, अपने ऐश्वर्य के ऊपर घमंड हो गया था कि मैं पूरे स्वर्ग का राजा हूँ, सभी देवताओं का मैं राजा हूँ। तो वो अपनी पत्नी सची देवी के साथ बैठे हुए थे और चारों तरफ से उनको अलग अलग देवता उस सभा में बैठे हुए थे, मरुतगण, वसुगण, अश्विनी कुमार और आदित्य, विश्वदेव, गंधर्व, किन्नर, विभुज, ये सभी देवता अलग अलग स्थान पर बैठे हुए थे और ये सभी इंद्र को सम्मान प्रदान कर रहे थे। अप्सराएं वहां पे डांस कर रही थी, गंधर्व बहुत अच्छे से इंद्र की प्रशंसा कर रहे थे। उसी समय एकाएक बीच में इंद्र के स्पिरिचुअल मास्टर बृहस्पति उस सभा के अंदर आते हैं। तो सामान्यतः जब भी हमारे गुरु सामने आते हैं, किसी भी अवस्था में हम हैं, तुरंत उनको उठ के प्रणाम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उनको अपने से ऊंचे स्थान पे बिठाना चाहिए। परंतु इंद्र जब यहाँ पे घमंड में थे तो इंद्र ने हालांकि देखा बृहस्पति को, परंतु उनको उन्होंने बृहस्पति को सम्मान नहीं किया। उनको ऐसा लगा कि मैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा हूँ और अगर मैं इनको सम्मान करूंगा तो लोगों को लगेगा कि ये मुझसे भी बड़े हैं। तो उस घमंड के कारण इंद्र ने अपने गुरु को देखा, उनको सम्मान नहीं किया, ना तो उनको कोई सीट के लिए पूछा, उनको तो सम्मान भी नहीं किया, उनको कोई सीट के लिए भी नहीं पूछा, बैठने के लिए भी नहीं पूछा और अपनी सीट से उठ के भी उनका सम्मान नहीं किया। तो इस तरह से घमंड के कारण इंद्र ने अपने गुरु को कोई भी किसी भी प्रकार से उनको टेक केयर नहीं किया कि उनके आध्यात्मिक गुरु उनके सामने खड़े हुए हैं, इस प्रकार से उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। बृहस्पति समझ गए कि इंद्र का व्यवहार इस प्रकार से था, ये समझ गए और समझ के बृहस्पति ने सोचा कि अभी चूंकि इतने महान ऋषि होने के कारण उनको भविष्य के बारे में भी पता था, तो उन्होंने सोचा कि अभी ये समय है कि इंद्र का घमंड टूटने का, और फ्यूचर उन्होंने देख लिया था कि इंद्र के साथ क्या होने वाला है। तो हालांकि वो इंद्र को साप दे सकते थे, परंतु इंद्र को साप नहीं दे के बृहस्पति वहां से वापस चले गए बिना कुछ बोले। और जैसे ही बृहस्पति उनके इंद्र के राज्य से, इंद्र की सभा से बाहर निकले, उसी समय इंद्र को समझ में आया कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। उन्होंने अपने गुरु के लिए तीसरा अपराध, नाम अपराध में से तीसरा अपराध होता है गुरु का सम्मान नहीं करना, गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करना, या उनको साधारण मनुष्य समझना। तो इंद्र को समझ में आया कि उन्होंने बृहस्पति के लिए ये अपराध कर दिया है, और उस अपराध के कारण इंद्र को अभी लगा कि अभी निकट भविष्य में उनके साथ कुछ हो सकता है, उनका जो ऐश्वर्य है जो है वो सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया है। और ऐसा बोल के इंद्र दुखी हो गए। दुखी होके अपने बाकी देवताओं से बोलते हैं कि मैंने कितना गलत किया, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं थी और इतना घमंड था मेरे भौतिक भोग के कारण कि मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु को भी सम्मान नहीं किया, उनको मैंने अपमान कर दिया। और अभी ये श्योर है कि मेरा जो भी ये ऐश्वर्य है ये सारा ऐश्वर्य खत्म होने वाला है, यद्यपि मैं देवताओं का राजा हूँ परंतु इस भोग के कारण मैं घमंड हो गया और मेरे ऊपर मिथ्या अहंकार की भावना आ गई। उसके बाद इंद्र को पश्चाताप भी हुआ कि ऐसे लोग जो कि अपने घमंड से ऐसे अपने सीनियर्स का सम्मान नहीं करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करते हैं, वैष्णवों का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का आज नहीं तो कल वो नरक के गामी बनते हैं, ये श्योर है कि उनको नरक की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से जब इंद्र पश्चाताप कर रहे थे, बृहस्पति समझ गए थे कि इंद्र के मन में ऐसी भावना आएगी, परंतु बृहस्पति उसी समय स्वर्ग लोक से अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि बृहस्पति इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली हैं, तो बृहस्पति ने जब सोचा कि वो अंतर ध्यान हो जाएंगे और इंद्र को नहीं दिखाई देंगे, तो इंद्र ने प्रयास किया परंतु बृहस्पति को नहीं ढूंढ पाए और बहुत उनको सर्च किया, ढूंढा पूरे स्वर्गलोक में परंतु बृहस्पति स्वर्गलोक में कहीं नहीं थे। तो इंद्र को अभी समझ में आ गया कि उनके गुरु उनसे अप्रसन्न है, इसलिए अभी उनके लिए कोई भी ऐश्वर्य प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। और ये खबर जब दैत्यों को मिली तो दैत्य बहुत प्रसन्न हुए, उनको लगा कि इंद्र की अभी बहुत खराब हालत है, उन्होंने अपने गुरु का अपमान किया है, उस अपमान के कारण इंद्र की शक्ति भी छीन हो चुकी है। इस प्रकार से दैत्यों ने सोचा और दैत्यों ने अपने अपने हथियार लिए और इंद्र के खिलाफ, देवताओं के खिलाफ युद्ध प्रारंभ कर दिया। और ऑलरेडी अपने गुरु का अपमान करने के कारण इंद्र की शक्ति कम हो गई थी। और जब इन देवताओं ने सुना कि दैत्यों ने उनके ऊपर आक्रमण किया है, और जब वो दैत्यों से फाइट करने के लिए गए तो दैत्यों ने बहुत आसानी से देवताओं को हरा दिया, क्योंकि एक तरफ तो अपने गुरु के अपमान करने के कारण उनकी शक्ति खत्म हो गई थी, उनके पुण्य कर्म भी खत्म हो गए थे, तो इस कारण से देवता लोग दैत्यों से बहुत बुरी तरह से हार गए। और जब वो ब्रह्मा के पास जाते हैं सारे के सारे देवता, तो ब्रह्मा जी उनको एश्योरेंस देते हैं कि आपको जो भौतिक भोग के कारण जो घमंड हुआ था उसके कारण आपने अपने गुरु बृहस्पति को सम्मान नहीं किया, और ये बहुत आश्चर्य है कि बृहस्पति तो ब्राह्मणों में सबसे बड़े ब्राह्मण है परंतु आपने उनका भी अपमान कर दिया, इतना घमंड आपको अपने ऊपर था कि आपने उस घमंड में बृहस्पति जैसे ब्राह्मण का भी अपमान कर दिया, और इसी कारण से आप दैत्यों के द्वारा हार चुके हैं। आगे ब्रह्मा जी बताते हैं कि पहले दैत्यों ने भी अपने गुरु शुक्राचार्य को अपमान किया था और इसलिए वो बहुत कमजोर थे, इसलिए आप लोग उनसे युद्ध में जीत सके थे, परंतु अभी उन्होंने शुक्राचार्य की पूजा करना प्रारंभ किया है, उनके निर्देशों को मान रहे हैं, तो दैत्य अभी बहुत शक्तिशाली हैं और आप लोग अभी बहुत कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने गुरु का अपमान कर दिया है। और नारद ने ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि दैत्य अभी इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि अगर वो इच्छा करें तो वो मेरे लोक पे भी अधिकार कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि अपने गुरु का सम्मान करने के कारण वो लोग इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि वो ब्रह्मलोक पे भी अधिकार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई ब्राह्मणों की पूजा करता है, गुरु का सम्मान करता है, तो उसके आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति में बढ़ावा मिलता है। और ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये तो एक फैक्ट है कि अगर किसी को ब्राह्मणों, गायों और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर श्रद्धा है और जो इनमें इनकी पूजा करता है तो हमेशा शक्तिशाली बना रहता है। और चूंकि बृहस्पति अभी गायब हो चुके थे, बृहस्पति को ढूंढने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए ब्रह्मा जी ने बोला कि आप विश्वरूप के पास जाइए। विश्वरूप जो कि त्वष्टा के पुत्र है, कल हमने जब क्लास एंड की थी तो यहीं पे एंड की थी। विश्वरूप का जन्म हुआ था, त्वष्टा दैत्यों की एक पुत्री थी रचना, उनका विवाह त्वष्टा के साथ हुआ था। त्वष्टा एक प्रजापति है ब्रह्मा के पुत्र, और त्वष्टा से विवाह होने के बाद उनके दो पुत्र हुए थे, उनका नाम था सन्निवेश और विश्वरूप। तो ये जो विश्वरूप है ये ब्राह्मण है, इनके पिता प्रजापति हैं, परंतु इनकी माँ जो है वो दैत्य वंश की। तो हाँ, ये पिता की तरफ से ये देवताओं से कनेक्टेड है और माता की तरफ से ये दैत्यों से कनेक्टेड है, क्योंकि इनकी माँ दैत्य की पुत्री थी और पिता जो थे वो प्रजापति थे। तो ये विश्वरूप ब्राह्मण को अप्रोच करने के लिए ब्रह्मा जी ने बताया, उन्होंने बताया कि आप विश्वरूप के पास जाइए और उनको गुरु के जैसा स्वीकार करिए, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण है और बहुत तपस्या भी कर रहे हैं। जब वो आपकी आपकी पूजा से प्रसन्न होंगे तो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। केवल आपको ये देखना होगा कि चूंकि उनकी माँ राक्षस वंश से हैं, तो वो कई बार अपनी माँ के वंश का भी पक्ष करते हैं, तो वो आपको सहन करना होगा। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने एडवाइस दिया तो देवताओं की सारी चिंता दूर हो गई और विश्वरूप के पास वो जाते हैं। और देवता विश्वरूप से बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, आपको बहुत सौभाग्य प्राप्त हो, क्योंकि हम आपके आश्रम में एक गेस्ट के जैसे आए हैं और हम आपके पिता के समान हैं, इसलिए आपको हमारी इच्छा पूरी करनी चाहिए। और हम अपने शत्रुओं के द्वारा हार चुके हैं और इस कारण से हम अभी बहुत दुखी हैं, ये देवता देवता जो है विश्वरूप से बता रहे हैं। इसलिए हम आपको अपने गुरु के जैसा स्वीकार करना चाहते हैं, जिससे कि आपकी तपस्या की शक्ति से हम दैत्यों को हरा सके। इस तरह से इंद्र ने जाके प्रार्थना की और उन्होंने फिर इंद्र ने जाके ये भी बताया दैत्यों से, नहीं, इंद्र ने विश्वरूप को इस प्रकार से बताया कि हालांकि आप उम्र में हमसे कम हैं, परंतु तब भी आप इतने शक्तिशाली हैं, इसलिए आप हमारे गुरु बनने के लिए, गुरु बनने के पूर्णतः योग्य हैं। इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि आप मनुष्य हैं और हम देवता हैं, तो आप हमारे गुरु कैसे बन सकते हैं। तो विश्वरूप ने जब इस प्रकार से रिक्वेस्ट को सुनी, देवताओं की रिक्वेस्ट को सुनते हैं, तो वो रिप्लाई करते हैं कि सामान्यतः वैदिक समय में एक नियम था कि कोई भी ऋषि जो था वो राजाओं के यहाँ पुजारी या प्रीस्ट बनना नहीं चाहता था। जैसे वशिष्ठ मुनि की भी इच्छा नहीं थी कि वो भगवान राम के वंश में, रघुवंश में जाके एक ब्राह्मण का कार्य निभाए, क्योंकि ब्राह्मण ऐसे कार्य जब करते हैं, किसी राजवंश के लिए पुरोहित का कार्य करते हैं, तो उनको उस राजवंश के पास में जाके रहना पड़ता है, जबकि ब्राह्मण नेचुरली जंगल में रहना पसंद करते हैं और किसी राजा से ज्यादा मिलना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए बहुत सारे ब्राह्मण तैयार नहीं होते थे ऐसी सेवा के लिए, कि राजा का पुरोहित बनने के लिए। इवन वशिष्ठ मुनि भी तैयार नहीं थे। ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि अगर आप रघुवंश के पुरोहित बन जाएंगे तो रघुवंश में कुछ कुछ जनरेशंस के बाद भगवान विष्णु स्वयं आने वाले हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने उनको इस प्रकार से बताया था कि आप अगर रघुवंश के पुरोहित रहेंगे तो भगवान विष्णु जब अवतार लेंगे तो आप उनका दर्शन हमेशा हर दिन कर पाएंगे, तो उस लालच के कारण वशिष्ठ मुनि रघुवंश के पुरोहित बने थे। तो सामान्यतः ब्राह्मण इतना पसंद नहीं करते थे वैदिक समय में। अभी तो अभी के जो ब्राह्मण है वो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि अभी के ब्राह्मण पैसे के पीछे भागते हैं, उनको लगता है बड़े आदमी के पुरोहित बनेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। परंतु पहले जो ब्राह्मण थे वो इस राजवंश में जाके पुरोहित बनने को ज्यादा अच्छा नहीं मानते थे, वो अपना यज्ञ करना, दान करना और जंगल में रहने को ज्यादा अच्छा मानते थे। तो त्वष्टा ने वही बताया, विश्वरूप ने यही बताया बताया कि कई बार इस प्रकार से पुरोहित बनना, किसी किसी ब्राह्मण ने अगर कोई ब्राह्मणिकल शक्ति प्राप्त की है तो उस ब्राह्मणिकल शक्ति का लॉस होता है अगर वो किसी किसी राजवंश का पुरोहित बनता है, परंतु मैं आपको मना भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप लोग पर्सनली यहाँ पे आए हैं और आप लोग इस ब्रह्मांड के महान 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 डायरेक्टर्स हैं, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं। तो इसलिए आपके जो आज्ञा है वो आज्ञा मैं करूंगा, और एक सच्चा ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण का एक कर्तव्य होता है कि वो चीजों पर डिपेंड नहीं करे, भौतिक संसार की वस्तुओं पर डिपेंड नहीं करे। और कोई भी ब्राह्मण को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी राजा का पुरोहित बनने के बाद उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा सोचता है तो उसके ब्राह्मणत्व को खत्म कर, ब्राह्मणत्व खत्म हो जाता है। तो ऐसा बोल के विश्वरूप ने उनके गुरु का पद स्वीकार किया और अपने कार्यों को बहुत उत्साह के साथ करने लगे। और विश्वरूप ने फिर इंद्र को एक मंत्र प्रदान किया, उस मंत्र को बोला जाता है नारायण कवच। जैसे हम देखते हैं नृसिंह कवच कई भक्त लोग पढ़ते भी हैं, धारण भी करते हैं, भगवान नृसिंह देव का मंत्र, उसी तरह से श्रीमद् भागवत में नारायण कवच आता है। नारायण कवच विश्वरूप ने तपस्या करके नारायण कवच उन्होंने प्रदान किया इंद्रदेव को। नारायण कवच के मंत्र बहुत सारे मंत्र हैं, नारायण कवच नाम से एक पूरा अध्याय है। उस उन मंत्रों को याद करने से भगवान नारायण के प्रति, भगवान नारायण हमें सारी संसार के सारे भय से रक्षा करते हैं। तो उस कवच का डिस्क्रिप्शन इसमें आगे आ रहा है, हो सकता है थोड़ा सा लेंथी लगे, कुछ कुछ हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि नारायण कवच कहलाता क्या है। नारायण कवच एक स्पेसिफिक मंत्र है जिससे शरीर के अलग अलग भागों को रक्षा की जाती है। तो इस प्रकार से विश्वरूप ने बताना प्रारंभ किया कि जब भी किसी को कोई डर आता हो, डर लगता है, तो सबसे पहले उसको अपने हाथ धोने चाहिए, हाथ और पैर धोने चाहिए, और जब करते हुए आचमन करना चाहिए। आचमन करते समय कौन सा मंत्र करना चाहिए? ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सर्व सर्व सब बाह्य अभ्यंतर सुचि। ये पवित्र मंत्र होता है, पवित्रता के लिए मंत्र, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतोपि। चाहे कोई व्यक्ति किसी भी अवस्था में है, पवित्र है या अपवित्र है, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, अगर वो पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो वो व्यक्ति अंदर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाता है। इस मंत्र को करने के बाद आचमन करना चाहिए। आचमन करने के बाद कुसा घास को स्पर्श करके और उत्तर की तरफ फेस करके बैठना चाहिए, और उसके बाद भगवान का मंत्र, भगवान नारायण का मंत्र पढ़ना चाहिए, ओम नमो नारायणाय। और इस मंत्र को पढ़ते समय व्यक्ति को अपने हाथों को शरीर के 8 भागों में क्रमशः टच करना चाहिए, 2 पैरों में, 2 घुटनों में, जांघों में, फिर पेट में, फिर हृदय में, फिर मुख में, फिर सिर पे, स्पर्श करते हुए इस मंत्र का जप करना चाहिए। और उसके बाद फिर जब मंत्र करें तो रिवर्स ऑर्डर में सिर से प्रारंभ होके पैर तक फिर से स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद उसको अगला मंत्र जप करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ऐसा करते समय, एक एक मंत्र का जप करते समय फिंगर टिप्स को स्पर्श करना चाहिए, इंडेक्स फिंगर से लेके सीधे हाथ के इंडेक्स फिंगर से लेके उल्टे हाथ की सारी मंत्र, सारी फिंगर्स को टच करना चाहिए। उसके बाद ओम विष्णवे नमः। और उसके बाद फिर प्रार्थना प्रारंभ होती है कि हे भगवान, जो कि गरुड़ के ऊपर बैठते हैं, वो मुझे चारों दिशाओं से रक्षा करें। हे भगवान वराह देव, जिन्होंने गर्भोदक समुद्र से धरती को उठाया था, वो मेरी रक्षा करें डाकुओं से। हे भगवान परशुराम, मेरी रक्षा करें जब मैं पहाड़ के ऊपर हूँ। भगवान रामचंद्र, मेरी रक्षा करें जब मैं दूर देशों में जाऊं। भगवान नारायण, मेरी रक्षा करें जब मैं अपने कर्तव्यों से नीचे गिर जाऊं। और भगवान नर, मेरी रक्षा करें जब मेरे ऊपर घमंड आ जाए। भगवान दत्तात्रेय, मेरी रक्षा करें जब मैं भक्ति योग की प्रैक्टिस करने से नीचे गिर जाऊं। भगवान कपिल, मेरी रक्षा करें जब मैं भौतिक क्रियाकलाप में डूब जाऊं। सनत कुमार, मेरी रक्षा करें जब मेरे ऊपर काम के प्रभाव बढ़ जाए। भगवान हयग्रीव, मेरी रक्षा करें जिससे कि मैं भगवान के प्रति अपराध नहीं करूं। नारद मुनि, मेरी रक्षा करें जिससे कि मैं विग्रह के प्रति अपराध नहीं करूं। इस प्रकार से बहुत सारे भगवान के सभी अवतारों के लिए मंत्र हैं। ये अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर कोई भक्त इन मंत्रों को याद कर लेते हैं, नारायण कवच को, हर दिन इस मंत्र का एक बार जप कर किया जा सकता है। जैसे नृसिंह कवच का हम जप करते हैं, कई भक्त करते हैं, उस तरह से इस नारायण कवच का भी हम जप कर सकते हैं। छठवें स्कंद में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन सा अध्याय है, नारायण कवच के नाम से अध्याय आता है, इसको पढ़ेंगे तो पूरे सारे मंत्रों के साथ याद किया जा सकता है। तो इस प्रकार से विश्वरूप ने नारायण कवच ये इंद्र को प्रदान किया और बताया कि जब आप ये नारायण कवच को धारण करेंगे तो इस नारायण कवच को धारण करते करने के बाद आपका कोई भी शत्रु आपसे जीत नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस कवच को धारण करता है तो अच्छा, शिवम प्रभु ने इसमें लिखा है, आठवें अध्याय में आता है, छठवें स्कंद का आठवां अध्याय है नारायण कवच के नाम से। उस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो नारायण कवच के मंत्रों को आप याद कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस नारायण कवच को धारण करता है तो वो जहां भी देखता है और अपने चरणों से जिस भी वस्तु को छू लेता है, वो वस्तु या वो व्यक्ति सारे प्रकार के डर से मुक्त हो जाता है, सारे प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति इस नारायण कवच प्रार्थनाओं को अच्छे से स्मरण करता है तो कभी वो डिस्टर्ब नहीं होगा जिंदगी में, और उसको कभी भी कोई गवर्नमेंट, कोई डकैत, कोई राक्षस या कोई भी प्रकार के रोग उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और पहले के समय में कौशिक नाम से एक ब्राह्मण ने इस नारायण कवच का उपयोग किया था। एक बार गंधर्व राजा चित्ररथ ने कौशिक ने इस नारायण कवच का उपयोग किया था और उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर दिया था अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके नारायण कवच का स्मरण करते करते। तो एक बार एक गंधर्व राजा चित्ररथ कौशिक के जो अस्थियां, जो कंकाल जो वहां पे डला हुआ था उसके ऊपर से निकले थे, एकाएक नारायण कवच की शक्ति से हवा से वो अपने विमान से सिर के बल नीचे गिर गए थे, जमीन से टकराए थे। और चित्ररथ को जब बहुत आश्चर्य हुआ कि एकाएक वो नीचे कैसे गिर गए, तो उन्होंने अपने साथ में जो देवता आए थे उनको बोला कि इस ब्राह्मण के कवच सरस्वती नदी में फेंक दीजिए। तो इतनी शक्ति है नारायण कवच की कि मृत्यु के बाद भी उस स्थान से जो व्यक्ति निकलता है वो उस स्थान को पार नहीं कर पाता है, अगर किसी ने उस नारायण कवच का जप करने के बाद अपना शरीर पास किया है। तो इस प्रकार से इंद्र को नारायण कवच की प्राप्ति होती है। और अभी विश्वरूप के तीन सिर थे, एक सिर से विश्वरूप सोमरस पीते थे, दूसरे से वाइन पीते थे और तीसरे से भोजन करते थे। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया कि विश्वरूप अपने पिता की साइड भी थे और माता की साइड भी थे। पिता की साइड में वो देवताओं से कनेक्टेड थे, माता की साइड से वो राक्षसों से कनेक्टेड राक्षसों से कनेक्टेड थे। तो कई बार वो देवताओं के लिए भी ऑफरिंग डालते थे, कभी कभी बीच बीच में सीक्रेटली राक्षसों के लिए भी ऑफरिंग डाल देते थे। तो एक बार इंद्र ने देखा कि विश्वरूप कैसे देवताओं को चीट कर रहे हैं और इंद्र को बहुत डर हुआ कि अगर इस प्रकार से चीट करेंगे तो राक्षसों से हार जाएंगे। तो इंद्र ने गुस्से में आके विश्वरूप के तीनों सिरों को काट दिया। अभी हम देख सकते हैं इंद्र ने केवल अपने स्वार्थ के लिए उनके जो गुरु हैं उनको मार डाला। थोड़ा सा डर था और अभी उनको गुरु माना था, उनसे नारायण कवच प्राप्त किया, नारायण कवच प्राप्त करने के बाद देवताओं को हरा दिया, परंतु थोड़ा सा डर हुआ फिर अपने गुरु को ही मार दिया। तो पहला सिर जिससे वो सोमरस पीते थे, पहला सिर एक कपिंजल पक्षी में बदल गया, और जिस सिर के द्वारा वो वाइन पीते थे वो कबूतर में बदल गया, और जिस सिर के द्वारा वो भोजन लेते थे वो तितली में बदल गया। और परंतु विश्वरूप को मारने के बाद इंद्र को बहुत दुख हुआ क्योंकि विश्वरूप तो बहुत महान ब्राह्मण थे। तो यद्यपि इंद्र के पास शक्ति थी कि ब्राह्मण को मारने का जो पाप था उसको वो नलिफाई करते थे, परंतु इंद्र को बहुत दुख हुआ एक ब्राह्मण को मारने के बाद। और फिर इंद्र ने एक साल तक उस पाप को ग्रहण किया और फिर उसको शुद्ध अपने आप को शुद्ध करने के लिए उन्होंने अपने पाप का बचा हुआ जो फल था वो धरती में बांट दिया, जल में बांट दिया, पेड़ों में बांट दिया और स्त्रियों में बांट दिया। चार प्राणियों में इंद्र ने अपने पाप को बांटा, धरती, जल, पेड़ और स्त्रियां। जब धरती ने इंद्र के पाप को पाप का चौथा एक चौथाई हिस्सा स्वीकार किया तो इंद्र ने खुश होकर उनको आशीर्वाद दिया कि धरती के अंदर जो गड्ढे बनेंगे वो अपने आप भर जाएंगे। ये धरती को आशीर्वाद दिया, क्योंकि धरती ने स्वीकार किया पाप, ब्रह्म रक्षा, ब्रह्म को मारने का, ब्राह्मण को मारने का पाप धरती ने स्वीकार किया। तो इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि धरती के अंदर जो गड्ढे बनेंगे अपने आप भर जाएंगे। और उस श्राप को स्वीकार करने के कारण अभी हम देखते हैं कि धरती के ऊपर बहुत सारे मरुस्थल हैं। ये मरुस्थल उसी श्राप के फल हैं जो इंद्र ने ब्राह्मण को मारा था, उसके पाप के कारण धरती पर मरुस्थल पाए जाते हैं। और उन मरुस्थलों में जो जीव रहते हैं वो जीव इंद्र ने विष्णु को मारने वाले पाप को शेयर करते हैं। अभी धरती के बाद आया नंबर वृक्ष का। वृक्षों ने भी एक चौथाई पाप स्वीकार किया। उसके आशीर्वाद में इंद्र ने उनको आशीर्वाद दिया कि वृक्षों की ब्रांच और जो छोटी ब्रांच और ट्विक्स, ट्विक्स मतलब तना, एक बार उसको काट दिया जाए फिर से उग जाएंगे। वृक्षों की ग्रोथ बढ़ती रहेगी, वृक्षों को अगर काट भी दिया जाए तो फिर से उगते रहेंगे। ये इंद्र ने उनको आशीर्वाद दिया। और जब ये जो वृक्षों ने पाप स्वीकार किया, उस पाप के फल स्वरूप हम देखते हैं वृक्षों में से सैप निकलता है। सैप को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। वृक्षों का हम देखते हैं वो जहरीला होता है, उसको पिया नहीं जाता है। वृक्षों को जब काटते हैं तो उसमें से सैप निकलता है, वो इस पाप का फल है। और इसके बाद स्त्रियों का नंबर आता है। स्त्रियों ने एक चौथाई पाप स्वीकार किया। और उस पाप के रिटर्न में इंद्र ने स्त्रियों को आशीर्वाद दिया कि वो काम इच्छाओं को लगातार एंजॉय कर सकती हैं। इसलिए स्त्रियों की काम इच्छाएं पुरुषों से ज्यादा होती हैं, क्योंकि स्त्रियों को इंद्र का आशीर्वाद है कि काम की इच्छाओं को हमेशा वो एंजॉय कर सकती हैं। और इस पाप का फल स्त्रियों को ये मिला कि हर महीने में 4 से 5 दिन उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जब वो अपवित्र मानी जाती हैं और उस समय वो मंदिर में भी नहीं जा सकती हैं, कुकिंग भी नहीं कर सकती हैं। तो ये उन्होंने इंद्र के इस ब्राह्मण को मारे जाने का, एक चौथाई पाप स्वीकार करने का उनको ये फल मिला। इसके बाद चौथा आता है पानी का, जल। जल ने जब एक चौथाई पाप स्वीकार किया तो उसके कारण जल को इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि जब जल को किसी दूसरे सब्सटेंस से मिक्स कर दिया जाएगा तो जल उसके वॉल्यूम को बढ़ा देगा। और इस कारण से, पाप स्वीकार करने के कारण से, जल में फोम और बबल दिखाई देते हैं। तो जल के अंदर जो हमें फोमिंग दिखाई देती है, फोम आता है, बबल्स बनते हैं, ये इंद्र के पाप के कारण बनते हैं। तो इस प्रकार से चार चीजों में पाप डिस्ट्रीब्यूट करने के कारण इंद्र तो पाप से मुक्त हो गए, परंतु दूसरी तरफ जब त्वष्टा को पता चला कि उनके पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया है, तो त्वष्टा बहुत गुस्से में आए और उन्होंने एक यज्ञ करना चालू किया। इस यज्ञ का मेन उद्देश्य था इंद्र को मारना, इंद्र को मारने का प्रयास करना। और जब इस यज्ञ की वो आहुति डाल रहे थे तो त्वष्टा ने एक मंत्र पढ़ा कि इंद्र के शत्रु तुम अभी यहाँ पे प्रकट हो जिससे कि तुम इंद्र को मार सको। परंतु संस्कृत भाषा इस तरह से है कि त्वष्टा जब इंद्र शत्रु बोलना चाहते थे, इंद्र शत्रु का मतलब इंद्र का शत्रु, तो इंद्र शत्रु बोलने की जगह पे त्वष्टा ने गलती से बोल दिया इंद्र सात्रो। शत्रु का मतलब इंद्र का शत्रु, और इंद्र सात्रो बड़ा की मात्रा लगाने से ऐसा हुआ कि इंद्र जिसका शत्रु है। तो इंद्र का शत्रु पैदा होने की बजाय एक ऐसा राक्षस पैदा हुआ जिसका इंद्र शत्रु था। दैट मीन्स वो ऐसे राक्षस को बनाना चाहते थे जो कि इंद्र को मारेगा, परंतु एक ऐसा राक्षस निकल के आया जो इंद्र के द्वारा मर जाएगा। तो हम देख सकते हैं मंत्र कितने कठिन होते हैं। अगर मंत्र के जप में थोड़ा भी यहाँ वहां डिफरेंस हो तो मीनिंग बदल जाता है। इसलिए हम कलयुग में देखते हैं कि वैदिक यज्ञों का प्रभाव ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मण इतने प्योर नहीं है कि वो यज्ञों के मंत्रों को ठीक से उच्चारण कर सके। यहाँ पे थोड़ा सा केवल आ की मात्रा ज्यादा होने से यज्ञ का फल अलग हो गया, अलग ही तरीके से व्यक्ति पैदा हो गया। तो जब इस प्रकार से उन्होंने यज्ञ किया तो यक्ष यज्ञ के दक्षिण दिशा से बहुत तेजी से अग्नि प्रदर्शित हुई। उस अग्नि के साथ एक राक्षस निकल के आया। ऐसा लगता था कि वो राक्षस प्रलय का प्रतीक है, और उस राक्षस का शरीर दिन लगातार बढ़ने लगा, और इतना काला और इतना भयानक राक्षस था कि ऐसा लगता था जैसे कोई उसको देख के ऐसा लगता था कि कोई बड़े पहाड़ को जला दिया गया। और इस राक्षस के बाल, उसकी दाढ़ी, उसकी मूछें, एकदम कॉपर के कलर से थे, कॉपर के जैसा उनका कलर था। उनकी आंखें एकदम जैसे दोपहर में 12 बजे धूप में जैसे सन सूरज चमकता है, उस प्रकार से उसकी आंखें चमकती थी। और ऐसा लगता था कि जैसे भगवान शंकर का रूप है, जो कि प्रलय संसार को प्रलय के लिए इस संसार में आए हैं। और जब वो राक्षस बार बार डकार लेता था जोर से, ऐसा लगता था कि पूरे साम्राज्य को खा जाएगा। और उनका मुख एक गुफा के समान था। और जब वो खड़े होते थे, ऐसा लगता था कि आकाश में ऊपर तारों तक उनका शरीर पहुंच रहा है। और इस त्वष्टा का ये पुत्र था, इसने तीनों के तीनों लोकों को ढक लिया, इसलिए इसका नाम हुआ वृत्ता। वृत्ता का मतलब होता है जो सभी चीजों को ढक लेता है। तो वृत्तासुर मतलब इतना बड़ा राक्षस जो कि पूरे पूरे ब्रह्मांड को ढक सकता है। और वृत्तासुर का जन्म ही हुआ था इंद्र से फाइट करने के लिए। तो इंद्र और देवताओं की जो आर्मी थी, वो वृत्तासुर को देखते ही वृत्तासुर से लड़ाई करने के लिए गए। पर वो लोग जो भी अस्त्र शस्त्र फेंकते थे, वो इस वृत्तासुर के द्वारा आसानी से खत्म कर दिया जाता था। इससे सारे के सारे राक्षस बहुत दुखी होते हैं, और ऐसा लगता है कि देवताओं ने अपनी सारी शक्ति खत्म कर छोड़ दी है। और वो अपने जीवन के लिए यहाँ वहां भाग रहे थे। और सारे के सारे देवता इकट्ठे होकर भगवान की शरण में आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं कि हम सभी बहुत परेशान हैं, कि समय इस प्रकार से बदल गया है, अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी मृत्यु का समय आ गया है। और चूंकि आप ही केवल इस संसार में किसी को बचा सकते हैं, इसलिए हमारी आशा है कि आप हमारी रक्षा करेंगे, आप हमें बचाएंगे। और भगवान ने फिर इस प्रकार से बताया, भगवान उनके सामने मैनिफेस्ट हुए और फिर उनको बताया कि जब भगवान उनके सामने मैनिफेस्ट हुए, तो सारे देवताओं ने प्रणाम किया और भगवान को प्रार्थनाएं की। यहाँ पे देवताओं की जो प्रार्थनाएं हैं, वो भी उनके दुख से प्रभावित प्रार्थनाएं हैं। देवता केवल डिस्कस, ये कोई शुद्ध भक्ति की प्रार्थनाएं नहीं है जो देवता कर रहे हैं। प्रार्थनाओं से ही पता चलता है कि ये कोई मिक्स डिवोटी प्रार्थना कर रहे हैं केवल अपने भले के लिए। तो देवताओं ने प्रार्थना की कि हे भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम इस संसार कि क्रिएशन के बाद हम प्रकट हुए हैं, इसलिए आपके चीजों को समझना, आपके क्रियाकलापों को समझना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और हे भगवान नारायण, आप इस वृत्तासुर से हमारी रक्षा करिए, क्योंकि हम आपके भक्त हैं, तो हमारे ऊपर कृपा करिए। और इस वृत्तासुर ने हमें जो दुख दिया है, इसके कारण आप हमारी रक्षा करिए। तो भगवान ने जब सुना उनकी प्रार्थनाएं, तो भगवान को भी इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं नहीं थी। शुद्ध भक्त अपनी प्रार्थनाओं में भगवान से ये नहीं मांगते कि भगवान हमें ये चाहिए, आप ये दे दीजिए, हम इससे दुखी हैं, इसको खत्म कर दीजिए। ये सब प्रार्थनाएं सकाम कर्मियों की होती है। तो देवताओं ने जब इस प्रकार से प्रार्थना की, तो भगवान को इतनी खुशी नहीं हुई, परंतु तब भी भगवान ने सोचा कि ये लोग शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए जो लोग शुद्ध भक्त नहीं, वो नेचुरली भौतिक भोग चाहते हैं। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। और भगवान ने बताया कि ये बात तो सही है कि जिससे मैं प्रसन्न हूं, उसके लिए संसार में कोई भी चीज कठिन नहीं है। और एक शुद्ध भक्त मेरे अलावा और कुछ नहीं मांगता है। जो लोग भौतिक भोग को चाहते हैं, वो वास्तविकता में जीवन के वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानते हैं। और हे इंद्र, मैं आपको एडवाइस करता हूं कि ये दधीचि ऋषि के पास जाइए। दधीचि ऋषि बहुत शक्तिशाली ऋषि हैं, अपनी तपस्या के कारण वो बहुत शक्तिशाली बन चुके हैं। और उनको आप रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको अपना शरीर प्रदान करें। उनके शरीर की हड्डी से जब आप एक अस्त्र बनाएंगे, वो अस्त्र जो को कहलाएगा वज्र के समान जो अस्त्र होगा, वो अस्त्र के द्वारा इस वृत्तासुर का विनाश हो पाएगा। एक्चुअली दधीचि ऋषि बहुत शक्तिशाली ऋषि हैं। भगवान उनका थोड़ा बैकग्राउंड बताते हैं कि दधीचि ऋषि ने अपने ज्ञान और तपस्या के कारण इतनी शक्ति अर्जित की थी, और उन्होंने पूरा आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया है। अश्विनी कुमार ने पहले उनको निर्देश मांगा था, और अश्विनी कुमार निर्देश मांग के जीवन मुक्त हो गए। जीवन मुक्त होने के लिए उन्होंने निर्देश मांगा था। और दधीचि ऋषि का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग, नारायण कवच जो था, वही त्वष्टा को दिया गया था, और वही त्वष्टा से विश्वरूप से आपने प्राप्त किया था। और उस नारायण कवच के कारण दधीचि ऋषि का शरीर बहुत शक्तिशाली है। तो तो जब अश्विनी कुमार ने उनके शरीर को मांगा था, अश्विनी कुमार जब उनके शरीर को मांगेंगे तो ऋषि आपको तुरंत दे देंगे, और जब आपको दधीचि ऋषि का शरीर मिलता है तो तुरंत आप विश्वकर्मा से बोल के उसमें से वज्र बना सकते हैं। दधीचि ऋषि के शरीर से वज्र का निर्माण करिए और उस वज्र में मैं अपनी शक्ति प्रदान करूंगा जिसके कारण से आप वृतासुर को मार सकेंगे। और वृतासुर की मृत्यु के बाद आप सभी का सौभाग्य उदय होगा। हालांकि वो राक्षस बहुत महान है, वो तीनों लोगों का विनाश कर सकता है, परंतु आप आपको वो नहीं मार पाएगा। और भगवान ने यह भी बताया कि वो राक्षस नहीं है, वो वास्तविकता में भक्त है, इसलिए वो कभी भी किसी से ईर्ष्यालु नहीं है। तो देवताओं को आश्चर्य हुआ कि ये तो वृतासुर तो राक्षस है, परंतु भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि वो राक्षस नहीं, वो तो भक्त है। तो देवताओं को ये पहले समझ में नहीं आई, और उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा भी नहीं, क्योंकि वो उस समय इतने समस्या में थे, इतने दुख में थे कि भगवान से उन्होंने कुछ पूछा नहीं। बाद में उनको ये पता चलता है कि जो वृतासुर नाम से राक्षस है वो वास्तविकता में बहुत महान भक्त है, जिनका नाम है चित्रकेतु। केवल एक सांप के कारण वो वृतासुर राक्षस के योनि में आए हैं। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमार जब जाते हैं दधीचि के पास, और अश्विनी कुमार को जाने के बाद इंद्र भी दधीचि के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, ये अश्विनी कुमार की हिस्ट्री बता रहे हैं कि अश्विनी कुमार पहले दधीचि के पास गए थे उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ऋषि ने बोला था कि मैं तो अभी यज्ञ कर रहा हूँ, बाद में आप आइएगा। और अश्विनी कुमार के जाने के बाद इंद्र भी दधीचि के पास आते हैं, वो बोलते हैं कि अश्विनी कुमार तो केवल फिजिशियन है, डॉक्टर्स है, तो उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान मत करिए, अगर आप उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे तो मैं आपका सिर काट दूंगा। इंद्र ने ऐसा धमकी दिया, और अश्विनी कुमार जानते थे कि इंद्र नहीं चाहते हैं कि अश्विनी कुमारों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो। तो जब वो दधीचि के पास आते आके फिर से ब्रह्म विद्या मांगते हैं, और दधीचि बताते हैं कि अगर मैं आपको ब्रह्म विद्या दूंगा तो इंद्र मेरा सिर काट देंगे। तो अश्विनी कुमार ने बोला कि ऐसा करते हैं, हम आपका सिर काटते हैं और आपके सिर की जगह पे हम घोड़े का सिर आपको लगाते हैं, और आप घोड़े के सिर से हमें ज्ञान प्रदान करिए, इंद्र उसको काट देंगे, फिर हम आपको आपका सिर फिर से लगा देंगे। अश्विनी कुमार चूंकि डॉक्टर्स थे, डॉक्टर मतलब फिजिशियन थे, तो बहुत सारी सिद्धियां थी उनके पास। तो दधीचि ने इसी प्रकार से किया, दधीचि ने उनको सिर के घोड़े के सिर के द्वारा ब्रह्म विद्या प्रदान किया, उसके कारण उनका नाम हुआ अश्वशिर, और बाद में फिर उनका वास्तविक शरीर उनको मिल गया। और उसके बाद डेमी गॉड्स फिर दधीचि के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, और दधीचि स्वीकार कर लेते हैं, और दधीचि प्रसन्न हो जाते हैं कि ये शरीर तो वैसे भी आज नहीं तो कल मरने वाला है, अगर ये शरीर मैं आप लोगों की मदद के लिए दूंगा, धर्म के सिद्धांत के लिए दूंगा, तो ये शरीर का शरीर सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा सोच के दधीचि अपनी हड्डियां शरीर को प्रदान कर देते हैं, और दधीचि समाधि में जाते हैं, समाधि में जाके अपने अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में स्थापित करके वो शरीर को छोड़ के भगवत धाम चले जाते हैं। और उसके बाद विश्वकर्मा उससे एक वज्र बनाते हैं, वज्र का निर्माण करते हैं, और भगवान विष्णु उस वज्र में अपनी शक्ति शक्ति भरते हैं। उसके बाद राजा इंद्र उस वज्र को उठा के ऐरावत के पीछे बैठ के वृतासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। ओके, तो युद्ध का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से इंद्र वृतासुर का वध करते हैं, और चित्रकेतु की स्टोरी कैसे प्रारंभ होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण। यस मैडम।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, वो ज्ञान इंद्र क्यों नहीं चाहते थे कि अश्विनी कुमार को ज्ञान मिले?
इंद्र को ऐसा लगता था कि वो तो छोटे छोटे छोटी कैटेगरी के देवता है, देवताओं के फिजिशियन है, तो उनको उस ज्ञान की जरूरत नहीं है, इसलिए वो बोल रहे थे कि उनको मत दीजिए।
अच्छा अच्छा और वो ब्रह्म ज्ञान क्या होता है जो दधीचि ऋषि ने उनको दिया?
ब्रह्म ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। भगवत गीता का जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान बोला जाता है।
अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा
हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु।
यस प्रभु।
प्रभु जी आपसे एक सवाल पूछना।
बताइए।
प्रभु जी मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ वो यूथ को इस कोन की तरफ लाने को, पर मेरी बात ही नहीं बन रही। कोशिश कर करके थक गया हूँ।
कितना कोशिश किया अभी तक?
मैंने पूरे हर रोज मैं अपना टाइम जो कीमती समय होता उनसे निकाल निकाल के वहां पर जाता हूँ और उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, भगवत गीता का ज्ञान देता हूँ। फिर भी कई काम वासना में फंसे हैं, कई कोई मोबाइल की गेम में फंसे हैं, उनको समझ में नहीं आता।
क्या किसी एक को भी समझ में नहीं आया?
नहीं प्रभु जी, मैंने एक दिन समझ आ जाता है, फिर दूसरे दिन उन बीच में वहां पर कलयुग के दूत भी रहते हैं मुझे लगता, तो वो उनको धर्म से उनको भ्रष्ट कर देते हैं।
एनीवे भले ही वो लोग नहीं मानेंगे, परंतु प्रचार करने में एक फायदा है कि आपको प्रचार करना बहुत अच्छे से आ जाएगा। आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है, तो आगे जाके उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, हो सकता है अभी वो लोग नहीं माने, पर कुछ कुछ लोग धीरे धीरे मानेंगे। भगवान चाहते हैं कि हम और मेहनत करें और आप सीख जाइए अच्छे से। जैसे जैसे अच्छे से सीखते रहेंगे तो और ज्यादा अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। चिंता की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी तो 40 साल तक भारत में प्रचार करते थे, भारत में उनकी कोई सुनता नहीं था, फिर वो अमेरिका गए, अमेरिका में जाके प्रचार किया। तो अभी तो आपको 40 साल नहीं हुआ है, तो कोई समस्या नहीं, 1-2 साल में कोई नहीं, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
प्रभु जी आपको क्या लगता, मेरे 15,000 इस्कॉन मंदिर बन जाएंगे?
ये तो किसी ने नहीं देखा है कि किसके कितने मंदिर बनेंगे। हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, कौन कितना बना पाएगा वो भगवान देखेंगे। आप ये मत सोचिए कितना बनाना है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिए, बाकी बनाना नहीं बनाना भगवान के हाथ में।
ठीक है प्रभु जी।
ओके ठीक है। कल एक अनाउंसमेंट था, कल सुबह जो भगवत गीता क्लास है वो शायद नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं कल सुबह बाहर जा रहा हूँ, तो दोपहर तक लौटूंगा वापस। तो मैं सोचा था कल भगवत गीता की क्लास इसी टाइम पे करने का, ये इस क्लास की बजाय 8 बजे भगवत गीता क्लास कर सकता हूँ, क्योंकि नहीं तो वो क्लास मिस हो जाएगी, फिर इस हफ्ते हो नहीं पाएगी। तो मोस्टली रात में 8 बजे कल भगवत गीता हम छठवें अध्याय को डिस्कस करेंगे। सुबह 11:30 बजे वाली क्लास नहीं होगी, उसकी जगह पे यही क्लास होगी 8 बजे।
प्रभु जी आपको एक बात बतानी है मैंने।
हाँ
प्रभु जी, जब मैं राधा कृष्ण के मंदिर में आज गया तो माथा टेकने लगा तो ज्योति बुझ गई, तो उसका क्या कारण है?
कुछ नहीं, ज्यादा तेज हवा चली होगी इसलिए बुझ गए, और कोई कारण नहीं। वो सब इतना मत सोचिए, आप भक्ति को पालन करिए। ज्योति बुझ गई, ज्योति जल गई, वो इतना मत सोचिए, भक्ति के नियमों को पालन करिए, जो होना होगा हो जाएगा।
ठीक है प्रभु जी।
ओके। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।